हरे रामा राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधे जय राधे जय श्री राधे।
आप में से कोई बाहर से कुर्सी ला सकते? कुर्सी दो चार कुर्सी लेके आऊं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बरसाना धाम की, श्री नंदगांव धाम की, श्री लाडिली लाल की, श्री कृष्ण बलराम की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री चैतन्य शिक्षाष्टक में दूसरा श्लोक आता है, क्या शुरुआत है उसके? नाम नाम अकारी बहुदा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितानं नियमितान स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। बहुत सारी लाइन है इसके अंदर, लेकिन एक महत्वपूर्ण लाइन ऐसी है कि इसमें कोई कठोर नियम नहीं है। भगवान के नाम के जप में कोई कठोर नियम नहीं है। हम सोचते हैं कि हम, बहुत लोग कहते हैं हाँ प्रभु जी आप तो पढ़े लिखे हो, हम तो अनपढ़ है। हमने कहा तो क्या हुआ, भगवान का नाम करने में कोई MBBS करने की जरूरत है क्या? तो कहते हैं वो आप तो वेल सेटल्ड हो अभी, आपका तो, हम तो गरीब है, बहुत तकलीफ होती है। कोई कहेंगे आप कितने हेल्दी हो, हम तो बीमार हैं। या कुछ लोग कहेंगे कि आप तो ब्राह्मण हो, आपका तो जन्म ही ब्राह्मण का है, आपके लिए कितना आसान है सब कुछ, हम तो ब्राह्मण नहीं है, हमारी दीक्षा भी नहीं हुई है, ऐसे बोलेंगे। तो कोई लोग बोलेगे हम लोग, आप लोग तो कितने अच्छे कुल से हो, हम लोग बहुत गांव से ऐसे पीछे वाले कुल से हैं। ये सब क्या है, इन्हें बहाने कहते हैं, ना करने के लिए ढूंढे हुए सुंदर बहाने। क्या करें प्रभु जी, हमारा विवाह ही नहीं हुआ है, ये बस सेटल हो जाए तो कुछ देखें। और हमारे जो है ना कृष्णचंद्र प्रभु, वो तो भारत के मशहूर उद्योजक है ना, बिजनेसमैन है, तो उनके सर्कल में जो बहुत रिच लोग हैं उसमें से कुछ लोगों का बिजनेस अभी नया है, तो वो उनको कहते हैं अभी क्या करें, आपका बिजनेस सेटल्ड बिजनेस है, हमारा तो अभी तक सेटल नहीं हुआ है ना, तो हम लोग भक्ति कैसे कर सकते हैं। और वो भी करोड़पति हैं सब लोग, लेकिन वो उनको बता रहे हैं कि हम लोग सेटल नहीं है अभी, हमारा तो बहुत स्ट्रगल है, आपका तो बिजनेस पिताजी से, पिताजी के पिताजी से भी सेटल्ड है, मतलब वही बहाना। और गांव का आदमी क्या बोलेगा, कहा प्रभु जी आप तो मुंबई के लोग हो, आपके पास सब सुविधा है, आपको लिए कितना आसान है सब कुछ करने के लिए, हमारे गांव में बिजली भी नहीं है, बारिश भी नहीं आती। तो हर व्यक्ति कलयुग का इस स्थिति में है, उसको ना करने के लिए बहाना चाहिए। अब आप में से कोई बोलेंगे हम इतने बुढ़े हैं, हम अभी इतना सब तकलीफ होता है, सुबह जो ज्वाइंट दुखते हैं, पेट साफ नहीं होता है, सर दुखते रहता है, शुगर हाई रहती है, हार्ट बीट बढ़ता है तो तकलीफ होती है, सांस फूलती है दो कदम चलने पर, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, कैसे भजन करेंगे हम, ऐसे बोलेंगे। आधा समय डॉक्टर के पास बीतता है, समय कहाँ बचता है, थोड़ा करेंगे तो थक जाते हैं, फिर बहाना। कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें आप कहेंगे प्रभु जी एकदम परफेक्ट स्थिति है जप करने के लिए, मैं आपको फोन करके खुद बता रहा हूँ, आज की स्थिति परफेक्ट है, आज मैं आज 64 राउंड जप करने वाला हूँ, ऐसा फोन आपको कभी नहीं आएगा, खाली कथा में कल्पना के रूप में बता दिया मैंने आपको कभी भी नहीं आएगा आपको ऐसा फोन, कि आज बेस्ट स्थिति है, हेल्थ की, फाइनेंस की, भावना की, मन की, हर स्थिति, बिजनेस की एकदम परफेक्ट स्थिति है आज। और ऐसी परफेक्ट स्थिति आएगी क्या जिंदगी में कभी, बताओ आप मुझे। अरे हम सब लोगों को आज की जो स्थिति है ना आपकी, आज की कितनी भी कष्टमय हो, ये आज की जो स्थिति है उसी में आपको करना है, ध्यान रखना इस बात का, ये परफेक्ट स्थिति कभी भी नहीं आएगा, लिख लो नोट के रूप में, लाल अक्षर में लिख लो, ये परफेक्ट स्थिति कभी भी नहीं आएगा। जैसे आप कहोगी जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी प्रभु जी, बहुत मुश्किल होता है, बहुत समय जाता है उसके लिए, हम कह लेंगे हाँ हाँ अच्छा है ठीक है, ऐसे आई अंडरस्टैंड ऐसे ही बोलूंगा और क्या बोलूंगा, लेकिन मन में क्या बोलूंगा, इसी में करना है आपको, कोई बदलने वाला नहीं है। थोड़े बड़े होंगे ना आप बोलेंगे अभी वो लव अफेयर कर रहे हैं, क्या करें उसको, अभी अभी सुधारें उसको, अभी तो बहुत क्रुशल टाइम है उसको संभालने का, अभी मैं समय नहीं मेरे पास, अभी अभी बोलेंगे उसको तो अभी MBBS में एडमिशन दिलाने का है, CET NET क्या क्या IIT बहुत सारे एग्जाम होते हैं इनके, अभी उसके एक बार हो गया ना फिर मैं फ्री। लेकिन हमने अभी ये सारे दौर से हम गुजर चुके हैं, अभी हमने पीछे मुड़ के देखेंगे तो कोई ऐसी स्थिति नहीं थी जो परफेक्ट थी, लेकिन जब शुरू किया ना वही स्थिति परफेक्ट थी, जिस दिन आपने निश्चय किया करना है ये मुझे किसी हालत में। मुझे अभी भी याद है मेरी बेटी की जो शादी थी ना, तो हॉस्पिटल की साउथ इंडिया यात्रा थी उस समय, तो साउथ इंडिया यात्रा पहले तय हुई थी, शादी बाद में फिक्स हो गई बेटी की, तो मैंने कहा डॉक्टर संघे को इस बार यात्रा नहीं कर सकते, अरे इम्पॉसिबल है, कौन करेगा इतना तैयारी सब, तो उन्होंने कहा कि 30 लोगों ने फ्लाइट का टिकट ऑलरेडी निकाल कर रखा है साउथ इंडिया यात्रा का, वो कैंसिल करेंगे तो उनको एकदम पीनट्स पैसे आएंगे उनके हाथ में, आपको करना ही पड़ेगा। और कभी यात्रा दिसंबर एंड, शादी कभी 4 फरवरी, पूरा समय यात्रा प्रिपरेशन में गया, यात्रा में गया, 4 तारीख को लौट के आया और नो प्रिपरेशन, फिर काम पे नहीं गया। 30 दिन केवल 3 से 5 स्लीपिंग टाइम, 3 AM to 5 AM एंड फुल टाइम फुल डे तैयारी। क्यों ऐसे करना है ना, वो करना ही है और करना चाहते भी, ऐसा नहीं कि हमको करना नहीं है पर करना पड़ता है, करना है हमको। तो जो इतना काम ऑफिस में होता है दिन भर 12-12 घंटे भी काम पूरा नहीं होता है, क्या हुआ 30 दिन काम पे ही नहीं गए, हॉस्पिटल बंद हो गया क्या? नहीं हुआ, चलता रहा अच्छी तरह से। और हमने तैयारी भी खूब अच्छी तरह से की, बड़ी धूमधाम से। उसके 2 दिन बाद आई कैंप में आई और 21 दिन यहाँ पर यात्रा है और प्रवचन दिया। क्यों? करना ही है। वो लोग सोच रहे थे कि हम अभी इस बार तो कैंप में नहीं आएंगे क्योंकि अभी इतना बड़ा काम हो गया, अभी तो नहीं आ सकेंगे, लेकिन सेकेंड डे ट्रेन पकड़ के आ गए इधर। कुछ बड़प्पन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली बता रहा हूँ कि मेरे जीवन का एक्सपीरियंस, कि जो नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था, लेकिन केवल करना ही है इस निश्चय से वो हुआ। अगर बहाने बनाते तो नहीं होता। मुझे कोई बोलता नहीं, क्या अभी प्रभु जी कैंप में नहीं आया आप? बोला सबको समझता है कि भाई नहीं आ सकते इस बार। जब हमारी बेटी का जन्म हुआ था ना, तो कितने बड़े हादसे हुए थे, तो हमको लगा कि नहीं जाना चाहिए कैंप में ऐसी छोटी बेबी को छोड़कर। हमारी पत्नी ने कहा कि मैं तो जा ही सकती नहीं हूँ, लेकिन आप जाओ, वो सेवा छोड़ो, सेवा मत छोड़ो, मैं संभाल लूँगी, आप जाओ सेवा करो और उस सेवा का 50% बेनिफिट तो मुझे वैसे ही मिलने वाला है, तो आप तो कम से कम जाके करके। तो मैं उस समय भी आया था इधर, मेरा दिल टूट रहा था ऐसे आने के लिए। ये सब उदाहरण क्यों दे रहा हूँ अपने जीवन के, क्योंकि बहाने बनाने हैं तो प्रकृति और समय और परिस्थिति आपको ना प्रचंड बहाने देंगे। बहानों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खेती है, बहानों की खेती बिना बीज के चलती रहती है और भरगोस उसकी फसल आती रहती है। जब चाहे तब आपको बहाने के लिए कोई कमी नहीं होगी आपके लिए। जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ ओनली। आप देखिए कि कैसे हम बहाने बनाते हैं ना करने के लिए, और जब करना होता है कैसे उसके कारण बताते हैं कैसे करना चाहिए उसके लिए, हम लोग ही जस्टिफाई करते हैं उसको। तो ऐसी एक आज मैं कहानी आपको बताने वाला हूं कि जहां पर भक्त बनना और भगवान प्राप्त होना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, लेकिन वो भी कैसे पॉसिबल हो गया, कैसे मुमकिन हो गया। एक कथा है, डाकू की कथा है। जब मैं एक बार, एक ऐसा समय था जब मैं बार बार अस्पताल में एडमिट होता था बैक पेन की वजह से, पता नहीं कितनी बार एडमिट हो गया भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में, 1-7 साल के पीरियड में इतनी बार एडमिट हो गया मैं, केवल एक कंप्लेंट, टर्न हो गया तो कैच, फिर एडमिट, फिर 3 दिन एडमिट, फिर वापस कुछ हो गया तो एडमिट, 2008 तक चलता रहा। तो उसमें एक बार मैं ऐसे एडमिट था हॉस्पिटल में, तो उसमें हिजोलिनेस परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज हॉस्पिटल में आए थे और मैं एडमिट था, और वहाँ से भी उनका एडमिशन वो सब कोऑर्डिनेट कर रहा था, और मेरे बाजू के रूम को मैंने उनको एडमिट करवाया, उनका इलाज चालू किया वगैरह वगैरह। तो उनको पता चला कि, क्योंकि वो मुझसे कम्युनिकेट कर रहे थे, उनको पता नहीं था कि मैं एडमिट हूँ, लेकिन मैं सब कम्युनिकेट कर रहा था उनके लिए, एडमिट किया, तो उनको बाद में पता चला कि वो बाजू में एडमिट है। तो मैं बेड रिडन था पूरा सा फ्लैट, और वो थोड़े मोबाइल थे, और वो आ गए मुझे मिलने के लिए। तब मेरे एकदम नज़दीक बैठकर उन्होंने मुझे ये कहानी बताई, इसलिए मुझे वो डिस्टिंक्टली याद है कहानी। तो ये गोवर्धन डाकू की कहानी है। ये सब प्रस्तावना इसलिए दिया कि आपके सारे बहाने इस कथा के अंत में समाप्त हो जाएं। ये अगर आपको रिजल्ट मिला तो हमारी कथा सफल हो गई, अगर आपके बहाने की खेत अभी भी हरे भरे हैं तो हमारी कथा फेल है और हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, क्या करेंगे और। तो ये गोवर्धन डाकू जब पैदा हुआ छोटा सा, उसके पिताजी बहुत खूंखार डाकू थे। कैसे थे, मतलब इतने निर्दयी और क्रूर थे वो। और बच्चे को एकदम स्टार्ट से ट्रेनिंग दिया कैसे क्रूर बनना है। आंखों से आंसू निकलना नहीं चाहिए, कितनी भी क्रूर हत्या भी हो अपने हाथ से, जिना तान के चलना है, बिल्कुल भावना को जगह नहीं देनी है, ऐसे ट्रेनिंग दिया उसको। हम लोग अपने वैष्णव संप्रदाय में भक्तों को करुणा और दया की ट्रेनिंग देते हैं, और डाकू लोग अपने बच्चों को क्रूरता की ट्रेनिंग देते हैं। उसके लिए भी ट्रेनिंग होती है, जो दिल टूटता है ना वो खून देखकर, फिर भी उसको कुछ नहीं करना है। ऐसे परवरिश में बड़ा हो गया वो, और पिताजी बड़े सरदार थे डाकुओं के। तो एक दिन गुजर गए तो ये सरदार बना, बिल्कुल पिताजी के पाँव पे पाँव रखते हुए। पिताजी ने बहुत कुछ क्रूरता सिखाई थी उसको, लेकिन एक बात ऐसे अलग से बताई थी उसको, कहते कुछ भी हो गया लाइफ में ना, हरी कथा आपको सुनना नहीं है। उसने कभी पूछा नहीं कभी क्यों वाई, क्योंकि हर ट्रेनिंग को ऐसे ही वो जो बोला वो एक्सेप्ट करते थे, वो ये भी एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, क्यों पता नहीं। लेकिन उसको बताया था कि जहां भी हरी कथा होती है ना, वहां जाना नहीं कभी, कभी भी सुनना नहीं, कभी भी सुनने का प्रसंग है तो कान पे हाथ रख के बंद कर देना। एक दिन वो ऐसे ही डाकू, खूंखार डाकू, अपना डकैती करके आ रहा था, बहुत सारा माल था उसके पास, और वो अकेला ही उस समय जा रहा था। तो चल रहा था ना, तो अचानक उसको ऐसा लगा कि कोई ऐसी सभा बैठी हुई है, कुछ ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, लाइट लगाई गई है, हार वार पहनाया गया है। तो लगा ये हरी कथा होगी, तुरंत कान बंद कर लिए, बोले इसको क्रॉस करने तक कान नहीं खोलूंगा, ये देखना भी नहीं, उसको सुनना भी नहीं है। जा रहा था तो कथा के पास आया ना, समझो यहां तक आया, समझो ऐसे इधर आया, तो उसके ना पाँव में कांटा घुस गया। अभी कांटा घुसते ही स्प्रिंग की तरह उसके हाथ कान से निकले और पाँव की तरफ गए। उसको पता नहीं चला कि मेरे कान से हाथ हट रहे और वो कांटे की तरफ जा रहे। तो कान के हाथ हटाए, ओह करके कांटे निकालने के लिए जितना समय लगा ना, उतना समय कान खुले रहे और भागवत कथा के कुछ शब्द उसके कान पर गिरे। इसको क्या कहेंगे, भाग्य कहेंगे, दुर्भाग्य कहेंगे? वो सोचेगा कितना दुर्भाग्य है, देखो कांटा घुस गया पाँव में, आज भागवत कान पे पड़ रहे हैं। तो उस बार अभी कथाकार कैसे होते हैं, अपना अपना निरूपण करते रहते हैं, अपना दृष्टांत देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं वगैरह। तो वो क्या सुना उसने पता है, उसने सुना कि देवताओं की छाया नहीं गिरती, देर आर नो शैडोज फॉर डेमिगॉड्स व्हेन दे वॉक, सूरज कहीं भी हो उनकी छाया नहीं पड़ती। ये कान पे उसके सर में वाक्य गिरा और वो गया अंदर उसके, फिर कान बंद करके वो चला गया। वो चला अकेला था ना, रात हो गई, तो चल रहा था तो ऐसे भिल्लों के समुदाय में आया, वो मशाल जल रही है, लोग ढेंगड़ेंगे वो अजीब सा म्यूजिक बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और बीच में एक देवी की मूर्ति है, और सब लोग ऐसे अजीब सा बात कर रहे हैं, अजीब सा डांस कर रहे हैं, अभी अजीब सा कुछ गीत गा रहे हैं, ऐसे विचित्र लोग से सब। तो इन्होंने उसको पकड़ लिया, वे बहुत बड़ा वीर था, लेकिन भाई इतने 50 लोग आएंगे तो क्या करेगा वो, ऐसा पकड़ लिया उसको, हाथ पांव ट्विस्ट करके उसको ले गए, और वो जो देवी थी उसको सामने ले गए। देख रहा है देवी को, अरे छाया नहीं गिर रही इसकी, हाँ सुना था मैंने, हाँ छाया नहीं गिर रही, मतलब ये देवता हो गई ये। तो वो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं अच्छा बलि मिला देवी को, बलि देने के लिए बहुत दिन से खोज रहे थे, तो उनके कोई गुरु आते हैं उनके डाकुओं के, वो देखते हैं इसको, बोले ठीक है जाओ उसको एग्जामिन करते हैं, कोई शरीर में भंग वंग तो नहीं है ना, शरीर में कोई भंग होना नहीं चाहिए ना बलि के लिए। सब देखते हैं ओके जाओ उसको स्नान वान कराओ, अच्छा सुगंधी द्रव्य लगाओ, उसको श्रृंगार दो करे कर, और सजा धजा के उसको देवी के सामने आके उसका बलि चढ़ाएंगे। तो इसको ना पता नहीं कैसी प्रेरणा हुई, उसको लगा कि अरे जो मैंने सुना था ना 2 मिनट के अंदर, वो तो सच है, तो मुझे अभी ये देवता को ही कुछ प्रार्थना करनी होगी बचाने के लिए, तो कुछ ना कुछ ट्रिक करना पड़ेगा कि ये लोग से हाथ से मैं छूट जाऊँ। तो ना उसको ऐसा ना अरेस्ट करके ना नदी में ले गए उसको, और ऐसा घेर के रखा है, वो बोला स्नान करो अभी आप, तो उसने क्या किया, अच्छा ना डांस करना शुरू किया, वाह 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 क्या भाग गया मेरा, वाह मैं भली जा रहा हूं, कितना सद्भागी हूं मैं, क्या लक है मेरा, ऐसा लक दुनिया में किसका नहीं है, ऐसा डुबकी लगा रहा है फिर उठ रहा है, वाह 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 क्या भाग गया मेरा। तो देखते देखे अजीब आदमी है ये तो रोना चाहिए, तो हंस रहा है वो, लगा पागल होगा शायद, लेकिन ठीक है गुरुजी ने बोला है तड़ाना है इसको, तो भी देख रहे हंसने लगे, वो भी लाइट हो गए थोड़े से कि भाई इतना मजबूत आदमी अगर भाग गया तो वी हैव टू बी अलर्ट ना, ये तो खुश है, ये तो खुश है, तो क्या इतना टेंशन लेने की जरूरत है। तो अच्छा तरह से चिल्ला चिल्ला के वाह क्या भाग गया मेरा करके वो बाहर आया और चल रहा है, फिर भी रास्ते में भी वाह वाह कर रहा है, चलो मेरा श्रृंगार करो मैं भी तैयार हो रहा हूँ, मुझे देवी के लिए अर्पण करो। तो एकदम सब लोग विश्वस्त हो गए कि कोई टेंशन की जरूरत नहीं। अचानक ना सडनली बीच में वो ऐसा भागने लगा ना इतना स्पीड से कि वो लोग देखते रह गए, बिफोर दे केम टू नो कि ये भाग रहा है, वो भाग चुका था मतलब वो बहुत पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था, लेकिन सोच रहा था कि कहे राइट मौके पे कहाँ भागो, और ऐसा भागा कि वो उसको पकड़ नहीं पाए, बहुत दूर तक भागा, फिर देखा कि कोई है ही नहीं अभी, तो चैन की सांस लिया, तो बैठा और सोचा कि भागवत की कथा ने मुझे बचाया आज, एक लाइन जो सुना था ना उसकी वजह से बच गया मैं आज। कुछ भी हो इररिलेवेंट बात हो, रेलेवेंट हो, जैसे भी हो, वो उसकी वजह से बच गया, ऐसा उसके मन में अनुभूति हुई। मे बी उसको ऐसा ही कुड नॉट जस्टिफाई हाउ, बट उसको अंदर एक अनुभूति हुई कि भाई भगवत ने मुझे बचाया, तो चलो वहीं चलते वापस जहाँ पर वो कथा चल रही थी। ये कथा राजस्थान की है और 17th century की है बाय द वे, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है आपके कथा में नोट करने के लिए, 17वीं सदी की कहानी है, राजस्थान देश की कहानी है, प्रदेश की। वापस चल के आता है उधर, तब तक सब चुराया हुआ सामान वामान सब ले लेते हैं, सब ऐसे ही आता है, लेकिन ऐसा बड़ा शरीर से ऐसी बड़ी बड़ी मूछें उसकी, दिखने में क्रूर खूंखार दिखने वाला, कोई सामने दिखेगा अकेला तो डर जाएगा उसको, ऐसा व्यक्तिमत्व आता है और कथा में बैठ जाता है। समझा भाई, ऐसे ही मेरे कथा में कोई ऐसा आ गया तो जिले के बाप रे कौन आया ये, आप लोग भी टेंशन में आ जाएंगे कौन आया ये, ऐसे भी को कथा में सब लोग टेंशन में आए, पता नहीं कौन आया है, लेकिन वो देख ही रहा था सब लोग, ऐसे कुछ लोग बोल भी नहीं पाए, पूछ भी नहीं पाए कौन हो आप, सभी चुपचाप बैठे रहे, वो भी चुपचाप बैठा रहा, तो उसको सुनना था क्या और क्या चल रहा है। तो उसमें ना कथा आरंभ हो रही है, कथा में श्याम सुंदर की कथा चल रही है दशम स्कंद की, उसमें बालक का वर्णन किया जा रहा है श्याम सुंदर का, और उसमें वो अभी आप भागवत पढ़ेंगे ना कभी पढ़िए अच्छी तरह से, आपको पता चलेगा कि भगवान के श्रृंगार का वर्णन भी बहुत सुंदर है उसके अंदर, भगवान कैसे यशोदा मई उनको श्रृंगार करती थी, अलंकार पहनती थी, हाँ यहाँ से लेकर पैर तक अलंकार का वर्णन है, सोने की साखली में मोरपंख लगाया करती थी, कानों में कुंडल, यहाँ पर एक मणि, इधर एक मणि, ऐसे सब श्रृंगार का पूरा वर्णन कथाकार ने किया। अब ये कौन है, डाकू और चोर है ना, तो उसके मन में क्या आएगा, समझो आप LIC एजेंट हो समझो और शादी में गए किसी की, आप देखेंगे किसको पॉलिसी बेचूं, ये औरत फ्री दिख रही है, इसको जीवन जीवन मुक्ति एक पॉलिसी बेच देता हूँ, जीवन के साथ जीवन के बाद भी मैं देखा हुआ LIC एजेंट है ना, अरे मैयत में भी गया ना, वो उधर भी देखता है कोई मिलता है क्या फ्री है तो मतलब बॉडी अभी डेल डाल दिया, अभी थोड़ा रुकना है उधर भी, बॉडी हो गया अंदर चला गया, रोना धोना भी हो गया बॉडी अंदर भी, वो बोले अब रुको थोड़ा ऐश लेके जाओ आधा घंटे में मिल जाएगा, तभी आधा घंटे बैठे तो तुरंत वैसा ये चोर जो है ना, वो चोर की मनोवृत्ति से कथा सुन रहा है, वाह क्या बढ़िया बालक है ये बालक इतना गहना पहना हुआ है, अगर मुझे कहीं मिल जाए ना तो एक ही बार लूट लूंगा, तो VRS ले लूंगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट, मतलब मेरा रिटायरमेंट ले लूंगा, मैं चोरी करूंगा, जरूरत क्या है, इतना अलंकार वाला बच्चा मिल गया, अगर मैं उसको लूट सकता हूँ तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, दिन रोज हर रोज 9 to 5 करने की जरूरत क्या है, चोरी डकैती। तो वो ध्यान से सुना है, और मराठी में कहते ना कान टौकारून, मुझे ये बच्चे को पता करना है कौन है ये बच्चा। तो पूरी दशम स्कंद की कथा पूरी नहीं हुई है, बालपन की कथा, बाल श्रृंगार वगैरह सब हुआ। तो तीन तीन पैरों में घुंघरू बांधती मैया सोने के, फिर भी ये नाचता है तो एक दो खोके आता है, क्योंकि जब नाचता है तो घुंघरू कभी कभी छूट के दो दो मील गिर जाते हैं और तीन में से एक ही लौट के आता है, इसलिए माँ बहुत कस के बांधती है उसको कि भाई तीनों लौट के आए। तो कथा उस दिन का विश्राम हुआ, कुछ कथाएं दशम स्कंद की हुई। तो फिर ये कथा के बाद ऐसा गया कथाकार के पास, है सब लोग देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है, कथाकार भी डरा हुआ अभी क्या होगा, पता नहीं मैंने कथा में ऐसा कुछ बोल दिया कि मुझे मारने के लिए आ रहा है। हाँ महाराज जी, उस बालक का नाम क्या है? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर कहाँ रहता है? वो वृंदावन में। वो किधर है? मथुरा में। क्या अच्छा लगता है उसको? बोले माखन अच्छा लगता है, मिठाई अच्छी लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा माखन अच्छा लगता है। ठीक है जा रहा हूँ, निकल जाता है। तो बोले बाल बाल बचे भाई, इतना ही पूछ के चला गया और कुछ पूछा नहीं। तो अभी क्या बोला उसको उन्होंने? श्याम सुंदर और वृंदावन, दो बात उन्होंने पूछा था, दो बात उसको भी, एड्रेस और नाम। तो वो रट्टे जा रहा है, श्याम सुंदर वृंदावन। क्या बोला वो? अरे जोर से बोलो सब लोग। क्या बोले? लेकिन कुछ समय आगे जाने के बाद में श्याम सुंदर भूल जाता है और वृंदावन याद रहता है, क्योंकि डाकू मोटे अकल का आदमी है ना। तो आगे जाता है तो अरे क्या नाम बोला था, क्या नाम बोला था, वृंदावन वृंदावन याद आ रहा है। चलो तो वापस जाते हैं, अभी कंफर्म तो करना है, जाना तो है ही बालक को पकड़ने के लिए। वापस आता है तो अगले दिन आता है वापस। अब अगले दिन क्या कथा चल रही है? रासलीला की। उसमें क्या कथाकार बता रहे हैं कि ये एक कृष्ण जो है ना, ये हजारों लाखों करोड़ों बने, हर एक गोपी के साथ एक कृष्ण, और अलंकार वही, लेकिन अभी इतने अनंत रूपों के ऊपर इतने अलंकार हैं। अरे इसमें से एक मिलेगा तो भी काफी है, दो मिले तो और भी अच्छा है, लेकिन एक भी काफी है। रासलीला के वर्णन में सुन रहा है और सुन रहा है और उसकी लालच बढ़ रही है, निश्चय बढ़ रहा है मन में कि इस बालक को पकड़ना ही है, किसी भी हालत में इसको ढूंढना ही है और पकड़ना ही है। तो कथा में बैठा रहा, सुनता रहा, और जब आया तो कथाकार वापस टेंशन में आया। और वापस क्यों आया? और बैठ के ऐसा, मतलब देखो कोई खूंखार व्यक्ति होता है ना, अगर वो ध्यान से सुन रहा है तो भी आपको वो खूंखार दिखेगा ऐसा ऐसा। कोई कोमल व्यक्ति है गुस्से में आएगा तो भी कोमल दिखेगा वो, लेकिन खूंखार व्यक्ति अगर ध्यान से सुन रहा है तो भी लगेगा कि कुछ मन में उसका चल रहा है, मुझे मारने की कुछ योजना बना रहा है। तो वो ऐसे देख रहा है तो उसको देख के भी टेंशन आ रहा है, लेकिन उसका तो कथा करने का काम है तो कथा कर रहा है। तो दशम स्कंद की कथा समाप्त होती है रासलीला की, और फिर वो आता है ऐसे, महाराज क्या नाम बताया था अपने बच्चे का? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर कुछ गलत बताया क्या? नहीं 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 नहीं, मैं भूल गया था इसलिए वापस आया मैं। ठीक है कोई बात, बहुत अच्छा निकल गया। फिर अभी जो भूल गया था वो ज्यादा जोर दे रहा ना कि ये भूल गया था, तो श्याम सुंदर वृंदावन। श्याम सुंदर क्या बोले? अभी जोर श्याम सुंदर पे है, कुछ देर बाद वृंदावन भूल जाता है। बोले ऐसे क्यों होता है मेरे बारे में बार बार, कभी ये भूलता हूं कभी वो भूलता हूं। वापस लौट के आता है कथा के स्थान पर। अरे जब लौट के आता तो क्या होता है? पंडाल नहीं, लाइट नहीं, डेकोरेशन नहीं, बोर्ड नहीं, गार्लैंड नहीं, कुछ नहीं। क्यों? कथा खत्म, दशम स्कंद हो गया। अभी तो पता है ना आपको, सुबह से सुबह तीन घंटे, शाम को तीन घंटे में तो पूरा दो स्कंद खत्म हो जाते हैं, दो स्कंद समाप्त। अभी क्या है, वो थोड़े सुखदेव महाराज थे, वो ओवर नाइट कथा कर रहे हैं, हाँ बिना खाए पिए सोए, ब्रेकफास्ट डिनर कुछ, लंच है ही नहीं, कुछ टी ब्रेक कुछ है ही नहीं बीच में। तो सुबह तीन घंटे, शाम तीन घंटे, तो एक दिन गया मतलब दो खंड हो गए, दस कम खंड खत्म समाप्त हो गया, बारह भी समाप्त हो गया, कथा भंडारा सब हो गया, सब चले गए, कथाकार भी चले गए। तो वो गया तो बहुत गुस्सा आया उसको, अरे क्या कहाँ चले गए सब लोग? तो इंक्वायरी किया, किसने आयोजन किया था? तो वो तो लोकल आदमी था, बोला उसका पता बताओ। अभी वो इतना उसका पर्सनैलिटी, वो भी डर गए, तुरंत बता दिया वो आदमी के घर पे। गया उधर ठाक ठाक ठाक, किधर है वो महाराज जी? बोले क्या हो गया? नहीं मुझे मिलना है उससे, एड्रेस दो उनका, मुझे अभी उनको मिलना है। तो तुरंत एड्रेस दिया भाई, राजस्थान में गया। अभी वो तभी दिन के टाइम पे, कथा के टाइम पे गया था ना वो, तभी तो ओके था, लेकिन जब वो एड्रेस लेके उस कथाकार के पंडित के घर पहुंचा तो रात के 2 बजे थे। हम छोड़िए, वो बोलेगा नहीं बेचारा सोया होगा, मैं कल सुबह जाऊंगा। तो डाकू है वो, धार 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 धार, महाराज उठो। तो बोला महाराज बाप रे, घर पे भी आ गए मेरे 2 बजे रात को, इस बार तो बाहर ही डालेगा मुझे। तो वो खोलने को तैयार नहीं, बोला खोल दोगे नहीं, दरवाजा तोड़ डालो, खोलो। बोला क्या चाहते हो? बोले एड्रेस चाहता हूँ। ओ ठीक है ठीक है, बोले सच्ची ये पागल व्यक्ति है, तो कोई बात नहीं, कोई डर तो नहीं अभी, मतलब आई एम ओके। बोलता है क्या एड्रेस बताया आपने उसका? बोले वृंदावन। अरे वृंदावन, हाँ अरे कैसे भूल गए पता नहीं, मैं क्या हो गया दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, नहीं तो एड्रेस श्याम सुंदर के नाम जब गया था पूछने के लिए, तो बोलता है कि इतना लंबा नाम क्यों, शॉर्टकट में श्याम बोल सकते क्या? बोला आपका नाम क्या है? गोवर्धन। तो आपको गोबर बोल सकते क्या? ए क्या बात कर रहे हो, गोबर मेरा नाम गोवर्धन है, गोबर क्या बोल रहे हो? ठीक है अभी तो, फिर इस बार अभी ना दोनों ठोक ठोक के बोला मन में, श्याम सुंदर वृंदावन। क्या बोला? और वो करते करते अभी रास्ते पे लग गया, वो दोनों याद है उसको अच्छी तरह से, किस दिशा में राजस्थान से वृंदावन है मथुरा है, करते करते पहुंच गया। उसको ये भी याद है कि बालक को बहलाने के लिए माखन चाहिए। तो मुझे हमेशा एक एग्जाम्पल याद आता है जब भी मैं सोचता हूँ कि अभी हम ड्राइविंग करते हैं ना, अभी कभी भी अभी तो सारी बातें करते हैं, कभी झगड़ा भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, ड्राइविंग अपने आप होते रहता है, ऐसा नहीं कि गियर चेंज तो मिस्टेक कर दिया, ब्रेक बीच में ब्रेक ही मार दिया, ऐसा नहीं होता है, सब कुछ ठीक चलते रहता है, क्योंकि वो ड्राइविंग का भी इतना अभ्यास हो गया ना कि हम झगड़ा भी कर सकते हैं ड्राइविंग करते समय। तो ये कुछ भी करते समय चोरी कर सकता है नेचुरली, बाय द वे लोगों को लूटते लूटते चला गया वैसे, बाय द वे ऐसा कुछ खास प्लान नहीं है, लेकिन आदत इतनी बनी हुई है कि वो इसको पकड़ा है दो झापा दिया निकाल लिया पैसा डाल दे जेब में, इसको पकड़ा है दो दफा दफा लगा दिया, इतना पर्सनैलिटी ऐसा है कि कुछ कर सकते नहीं। ऐसे करके उसने काफ़ी पैसा इकट्ठा किया और मथुरा में आते आके ना माखन खरीद लिया उसने बहुत सारा। बोले बालक को लुभाना है तो बहुत सारा बड़ा कम नहीं पड़ना चाहिए, मतलब बालक ज़्यादा भी खा गया तो, इतना कथा सुना था ना कि ये यहाँ जाता है चोरी करता है, वहाँ जाता है चोरी करता है, इनका मटका भर के खाता है, इनका मटका भर खाता है, मतलब बहुत सारा खाने की कैपेसिटी है उसको माखन की, अपने पास ऐन मौके पे ना, ऐन मौके पे एकदम कम नहीं पड़ना चाहिए, तो इसलिए बहुत सारा माखन ले लेता है। और वो लेके फिर ना मथुरा से आगे पूछते 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 वृंदावन पहुँच जाता है, और सबसे पूछता है ये वृंदावन है ना, ये वृंदावन है ना, 4-5 लोगों से कन्फर्म करता है वृंदावन है। तो पूछता है लोगों को, मुझे श्याम सुंदर से मिलना है। तो लोग बोले कौन? श्याम सुंदर शर्मा? नहीं नहीं, वो श्याम सुंदर माखन चोर यशोदा का लाडला जो है ना, उसको मिलना है मुझे। तो लोगों ने जोरों से हंसने लगे, हे बड़ा क्रोध है उसका, आंख लाल, क्या हंसते हो? तो देख के लोग डर गए बेचारे, मतलब ये सही में पागल भी है लेकिन बहुत स्ट्रांग भी है, तो फिर वो क्या करेंगे? दूसरे को पूछता है, पहला हंसने का प्रयास करता है लेकिन वो हंस नहीं सकते, फिर क्या करेंगे? अभी डर भी लग रहा है, हंसने को भी आ रहा है, लेकिन अभी ये पूछ रहा है 17वीं सदी में यशोदा के लाडले को उसको मिलना है तो आप हंसेंगे ना उसको, लेकिन इसका निश्चय फिक्स है। तो लोग अभी क्या करते हैं, उसको समझाते हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं, अभी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी पता करके आया हूँ पंडित से मिलके, सब कंफर्म करके आया हूँ, क्या बताते हैं आप भागवत में विश्वास रखते नहीं है, आप सब लोग भागवत सुनने वाले विश्वास रखते नहीं है, भागवत में सुन के आया हूँ मैं अभी, कैसे बोलते हो नहीं है नहीं है, मुझे पता बताओ आप। फिर उन्होंने बताया नंदगांव का पता बताया, सब बताया उसको, मतलब क्या करें अभी, पाला छोड़ना है तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना, तो उसको बता दिया। तो और पूछा उसने क्या करता है लड़का, तो फिर उन्होंने उसको बहलाने के लिए और पाला छूटने के लिए बताने लगे कि वो ना दिन में गाय चराता है, ये वन में जाता है, वो वन में जाता है, तो उसको लग रहा था कि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ उसके बारे में। रात को क्या करता है, तो मैया के पास रहता है, बोला दिन में ना वो अपने छोटे छोटे बालकों के साथ में गाय चराते रहता है, तो बोला अच्छा है वो सेफ टाइम है, मतलब बड़े लोगों के बीच में क्यों जाना है रात को, दिन में अपना बाहर अपने घर के बाहर जंगल में कहीं पकड़ना ईजी है उसको, अपना काम बन सकता है ना, वो चोर कैसा ना राइट टाइम ढूंढता है, सही टाइम जो तो ज़्यादा से कम कष्ट हो, अधिक से अधिक माल मिले। तो ये ऐसा एक वन में जाके वृंदावन में बैठ जाता है, झाड़ी में छुपकर वेट कर रहा है 17वीं सदी में, अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा। कुछ लोग देख रहे हैं उसको, वो हंस रहे दूर दूर से, देखो बैठा है श्याम सुंदर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इतनी उसके मन में फर्म दृढ़ श्रद्धा थी, आएगा वो जरूर आएगा और मैं जरूर लूटूंगा उसको। एक दिन बीत जाता है, अगले दिन फिर बैठा हुआ है झाड़ी में, और क्या कहें आपको, उसको बच्चों के किलबिलाहट सुनाई पड़ती है। बड़े सतर्क होकर देखता है कि कुछ बच्चे ऐसे खेलते हुए हम लोग भी कभी यज्ञ करते हैं ना, तो सखाओं को आहुति अर्पण करते हैं। तो हमेशा कहता हूं अभी आपको किलबिलाहट सुनाई पड़ेगी, ध्यान से सुनना। सखा आ रहे हैं, सुबलाय स्वाहा, उज्ज्वलाय स्वाहा, श्रीदामाय स्वाहा, मधुमंगलाय स्वाहा, ऐसे हम कहते हैं वातावरण निर्मिति करने के लिए। वो किलबिलाहट सुनाई पड़ती है और वो किलबिलाहट पास में आती है, थोड़ी ज्यादा बड़ी बड़ी होके हाँ, और उसके सामने पूरे सखी सखा वृंद जो है प्रकट हो जाते हैं। सारे बालक, कोई इधर पेंसिल लगाए हुआ है, कोई इधर मुरली लगाए हुआ है, कोई यहाँ मुरली लगाया हुआ है, किसी के हाथ में झोली है, किसी के हाथ में क्या है, लकुटी है, ऐसे खेल खेल के आ रहे हैं। उसके बीच में कृष्ण बलराम वन में बहुत देर खेल खेलते हैं और ये देख रहा है, अरे सारा वर्णन मिलता जुलता है, जो जो वर्ण अलंकारों का वर्णन किया सब अलंकार दिख रहे हैं उसके शरीर पर। लालच, कब मिलेगा मुझे अकेला, इतने बच्चों के बीच में क्या करूं मैं इसको। तो वो दिन तो ऐसे ही बीत जाता है और वो सब बच्चे खेलते खेलते चले जाते। दूसरे दिन आता है, बोला आज भी आएगा। वो दिन भी झाड़ी में झुकता है तो कृष्ण तो सर्वज्ञ है ना, सब जानते हैं। तो वो दिन कृष्ण देखते हैं कि इतना इतना दृढ़ निश्चय से आदमी कहाँ कहाँ से सोच सोच कर योजना बनाकर आया हुआ है। तो भगवान ना क्या करते हैं, बहुत देर खेलते हैं, वो देख रहे झाड़ी से कृष्ण बलराम सबको देख रहा है, झाड़ी में खेलता है। फिर कृष्ण को भगवान मुरली बजाते हैं, ऐसी मुरली बजाते हैं कि सब ग्वाल बाल सो जाते हैं, स्लीपिंग ट्यून राग लोरी बजा के बोलते हैं। तो उसमें से एक मोर आके म्याऊ, अरे अभी सोने का समय है। फिर कोई कोयल उठ के कुछ बोलती है, ए अभी बोला ना आपको सोने का समय। सब ग्वाल बाल, किसी को आप सोच सकते हैं ना, ग्वाल बाल अभी जब गाय चरा रहे हैं उनके सोने के लिए गए उधर, उनको कृष्ण के साथ खेलना है बाबा, तो वो बीच में अभी अचानक सोने का धुन क्यों बजा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा उनको, इसलिए वो बीच में उठ कर भी देख रहे हैं। बोला आज अभी मैं जो कह रहा हूँ ना सब सोना है बस, तो फिर सो जाते हैं। तो कृष्ण देखते हैं कि सब लोग सो गए, कन्फर्म करते हैं, फिर ना एक छलांग लगा कर तुरंत झाड़ी के उस तरफ जाते हैं और इसको मिलते हैं। बोले कौन हो तुम? तो मैं गोवर्धन डाकू। अच्छा, यहाँ पर क्यों आए हो? बोला आपसे मिलने आए हूँ। क्यों? बोले नहीं, वो आपको माखन खिलाने की बहुत इच्छा थी मुझे, इसलिए मैं आया हूँ। कहते हैं देखो, झूठ मूठ की बात मत करना, मैं सब के मन की बात जानता हूँ। तो बोले बालक बहुत मिस्टिकल लगता है, मतलब बातें ऐसे कर रहा है जैसे कि मतलब हो सकता है मेरा माइंड ही पढ़ता होगा, वो मेरा मन ही पूरा रीडिंग करता होगा उसे। तो कहता है कि अभी क्या है, अभी क्या है ना, बोलते ना मराठी में कहावत है, ताकाला जाऊन भांडा लपवायचा कारण काय है, मतलब ताक लेने गए किसी फ्री में तो वो बर्तन छुपाने की जरूरत क्या है, ठीक है ताक लेने आए दे रहे हो ताक दे दो छाछ। तो बोलते ठीक है, अभी इसको बोल लेते। बोला ऐसा है कि मैंने आपके बारे में बहुत वर्णन सुना है, इसलिए आपके गहने चुराने के लिए आया हूँ। मतलब मैं जानता हूँ। तो तुम कैसे जानते हो? तो मैं भी चोर हूँ। अच्छा, तुम भी चोर हो? तुम क्या चोरी करते हो? बोले मेरे करियर के शुरुआत में मैं माखन चोरी करता था, थोड़ा करियर में एडवांस हो गया तो फिर क्लोथ्स वस्त्र चोरी करने लगा, और पीएचडी किया तो फिर हार्ट चोरी करने लगा। बोले वाह अजीब दो चोर हो आप, अपने तो सेम बिजनेस है। हाँ, और आपने भी खुल्लम खुल्ला बोल दिया। कृष्ण भी बोलते हैं ठीक है अच्छी बात है, तुम भी चोर हम भी चोर, अभी क्या करना है? बोले तो माखन खाओगे ना, माखन खाओ। अरे मैं इतना उल्लू नहीं हूँ, तुमने इसमें जहर डाला होगा तो पहले तुम खाओ। तो एक तरफ से अभी बालक को कैसे भी करके कन्विंस करना है ना, रिझाना है उसको, बहलाना है, तो खाओ। एक तरफ से खाता है, बोला अभी तुम खाओ। हाँ, तुमने जहर इस तरफ रखा होगा इसलिए तुमने इससे इस तरफ खाया, अभी इस तरफ का खाओ। तो ये भी खाता है, फिर दो टाइप दो साइड तो बाकी है, तुमने वहाँ रखा होगा तो उस साइड का भी खाता है, इस साइड का भी खाता है। अभी बोलता है बालक खाओ, तो बोलता है बीच में रखा होगा। पॉइजन, तो पूरा मकर उसी को खिलाता है, बेचारा खाते जाता है, क्या करे बालक को, तो अभी जाने के पहले कुछ ना कुछ तो उसकी इच्छा पूरी करना है। भाई अभी तुमने मुझे पूरा मक्खन खवा दिया, अभी तुम मुझे आपके गहने चाहिए। बोले ठीक है कोई बात नहीं, ले लो चालू करो। अभी यहां से हमारी कहानी, क्या कहते हैं उसको, मेडिटेटिव कहानी शुरू होती है। हाँ, अभी आपको एकदम ध्यान से, हो सके तो आंख बंद करके, नींद ना आती होगी तो ध्यान से सुनना है आपको और चिंतन करना है उसके ऊपर। हाँ, तो कृष्ण ऐसे खड़े हो जाते, वो इतना भी अभी इतना वो लालायित हो गया है कि अभी मेरा लक्ष्य मेरे सामने है, तैयार भी हो गया है, अभी इसकी बढ़िया मौका कहाँ अब मिल सकता है। तो वो देख रहा है उसको, हरी निहार रहा है ऊपर से नीचे, कहाँ से शुरू करूं, व्हाट इज बेस्ट। तो कहीं शुरू तो करना पड़ेगा, चलो सर से ही शुरू करते। तो वो सर से ही शुरू करते हैं ना, तो वो कृष्ण भी उसको असिस्ट कर रहे हैं कि ठीक है, ऐसे हिल रहे हैं ऐसे ठीक से। तो वो उसके पहले वो पगड़ी निकाल देते हैं, फेटा होता है ना बांधते, वो निकाल देते हैं। वो देखते हैं सोने की जंजीर है उसके अंदर, उसके अंदर मोरपंख लगा हुआ है। तो मोरपंख निकाल के फेंक देते हैं और जंजीर निकालना कोशिश करते, बोले धीरे से निकालना, मैया ने बांधी हुई है जंजीर, निकाल लेता है। फिर पता है ना आपको, फिर यहाँ का मणि, फिर यहाँ का मणि, फिर कानों के कुंडल जो ऐसे हिल रहे ना उसके, तो उसकी परछाई जो है ना, वो किरण गालों में, नीले नीले गालों पर गिर रही है, वो भी देख रहा है, वो बहुत मोहित हो रहा है उसके रूप को देखकर, अंदर से ऐसे गदगद हो रहा है उसके। लेकिन उसको अपना बिजनेस करना है, जो भी जल्दी जल्दी, क्या अभी भावनाओं के बीच में लाना देना नहीं है। सब उतारता है एक एक करके, सामने खड़े हैं, उतार रहा है, साइड में रख रहे हैं, एक एक करके कंठ तक पहुँच गया। बहुत सारे यहाँ पर कंठहार रखे, वो निकाल देता है, रख देता है। फिर बाजू बंद जो है वो निकाल लेता है, यहाँ का दाइना बाइना। आप चिंतन कर रहे हैं ना, कृष्ण भगवान खड़े हैं सिर में, तो सब एक 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 करके उतार रहे हैं। फिर कमर, सब मालाएं निकाल के, फिर कमर काचनी किनकिनी वो निकाल लेता है, वो रख देते हैं। फिर नीचे जाते हैं, सब अलंकार, ढेर है अलंकार का, पूरा यहाँ पर ऐसे छोटा पर्वत तैयार हो रहा है अलंकारों का, एक एक बात बात बढ़ने के बाद में, और लास्ट में फिर पांव पांव तक पहुंच जाता है। मैंने पहले आपको बता दी ना, यशोदा माई तीन तीन बार चार चार बार घुमा घुमा के गांठ मारकर उसके पैंजन पायल लगाती है उनको। तो ये बहुत कोशिश करता है हाथ से निकलने का। और कृष्ण भी पैर ऊपर करते हैं, अपने पैर के ऊपर रखते हैं, थोड़ा सा आधे बैठ जाते हैं, उसके पैर कंधे पर पांव रखते हैं, कुछ भी हर चीज का कोशिश करते हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन ना उसको नहीं हो रहा है। वो कृष्ण बोल रहे हैं, अरे करो करो कोशिश करो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। मैं जनरली किसी को हाँ नहीं करता, लेकिन आपको हाँ कर दिया, आप करो। तो वो हाथ से बहुत ट्राई करता है लेकिन उसको नहीं जमता है। फिर क्या करता है, समझो आपको मैंने एक वेफर का पैकेट दिया, समझो प्लास्टिक का, एकदम टाइटली सील्ड। पहले क्या करेंगे आप, हाथ से तोड़ेंगे, और बाद में क्या करेंगे, नहीं होता है तो। हाँ, सब लोग एक्सपर्ट है इसमें सब। हाँ, मालूम है, दांत से आपको अल्टीमेटली तोड़ना पड़ता है उसको। तो इससे ना दांत लगाया उसको, और दांत लगाने के लिए उसको ना एक हाथ से ऐसा पांव पकड़ना पड़ा, एक हाथ से ऐसा पांव पकड़ना पड़ा, और फिर दांत लगा के, तो उसका हाथ है ना उसके तलुओं के लगा, कृष्ण के तलुओं को लगा। जैसे ही उसने कृष्ण के तलुए के स्पर्श किया ना, द मोमेंट ही टच्ड द सोल ऑफ कृष्णस वन फुट वन लोटस फुट, तो वो गदगद हो गया, ऐसे ऐसे सबको कांपने लगा। वो उसकी आंखों से आंसू आने लगे, उसका गला गदगद हो गया, वो ऐसा ऐसा कांपने लगा। तो कृष्ण कहते हैं, ए भाई डोंट ब्रिंग इमोशन इन बिजनेस। हाँ, अपना कार्य करते हुए भावनाओं का काम नहीं कुछ इसमें, डोंट मिक्स अप इमोशंस व्हाइल डूइंग योर बिजनेस, डू योर बिजनेस नाइसली। तो वो कोशिश कर रहा है अपने कंपन को बंद करने के लिए, अपने कंठे को बंद करने के लिए, मतलब गदगद होने से बचने के लिए, अपने हाथों को कांपने से भी बचाने के लिए वो ट्राई कर रहा है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। उसके नियंत्रण के बाहर है वो सब विकार जो उत्पन्न हो रहे हैं, वो उसको कपवा रहे हैं। अभी पांव तो पकड़ना है ना उसको, जैसे पकड़ता तो करंट पकड़ा, तो पास करंट, क्या करेगा अभी, क्या ये बालक क्या है, अद्भुत बालक ये। फाइनली ना कैसे भी करके पांव पकड़ के, दांत से वो एक पकड़ के सब निकाल लेता है वो। अभी दूसरा पैर, दूसरा पैर में वही स्थिति है, हाथ लगाए थे कंपन, अरे बहुत देर तक चल रहा है ये, तो ऊपर का नीचे तक तो बहुत जल्दी निकाल दिया, लेकिन पैर में बहुत समय गया। तो उसको लालच कैसे कि एक तो सोच सकता है कि छोड़ो ना दूसरा पैर, इतना उठाओ और भागो यहाँ से, लेकिन उसका दिल नहीं कर रहा है कि ये तीन घुंघरू जो है वो बहुत कीमती है, वो छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरे पांव भगवान ऊपर करते हैं, उधर भी वही स्ट्रगल, वही कंपन, वही आंसू, वही गला गदगद होना, वही विकार सब चालू होते हैं। बड़ी मेहनत से बार बार कृष्ण टोक रहे हैं उसको, ए भावनाओं को मत लाना, ये रोने का काम क्या है, चोर कभी रोता है क्या, मैंने कभी रोता माखन चुराते समय। तो वो और भी उसको लग रहा है कि अरे मैं क्यों रो रहा हूँ, इतना बड़ा मैं खूंखार डाकू हूँ, इतना निर्दय क्रूर हूँ, मुझे आज आंसू क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आंसू, ये समझ में नहीं आ रहा है उसको। श्री श्याम राधा श्याम सुंदर भगवान की यही है श्याम सुंदर जी। देखो सब अलंकार निकल चुके हैं, अभी एक ही पैर बाकी है उनका, उसको भी मेहनत करके निकाल लेता है। हाँ, लास्ट घुंघरू डाल देने के बाद में यहाँ पर ऐसा पर्वत बना हुआ है, उसमें बहुत तेज है, प्रकाश रत्न माणिक भरे हुए ना उसके अंदर, हर प्रकार के रत्न है, सोना है, हीरा है, सब कुछ है उसके अंदर। वो देखता है वाह क्या प्राप्ति है जीवन की, इसके बाद में कोई चोरी करने की जरूरत नहीं है। वो फिर बालक को देखता है, अभी वो पूरा अलंकार विहीन है, मैं जाऊं, देखता है तो बालक तो इससे भी अधिक तेजस्वी है, पहले भी तेजस्वी लग रहा था लेकिन अलंकार उतारने के बाद भी इन अलंकारों से भी अधिक तेजस्वी दिख रहा है वो। आश्चर्य हो गया, क्या रहस्य क्या है ये, अलंकारों के वजह से तेजस्वी लग रहा था तो अलंकार उतार दिए और वो भी तेजस्वी है ही अपने में, ऐसा नहीं कि उनका पावर चला गया उसके अंदर, वो भी अपने आप तेजस्वी है, ये तो बहुत तेजस्वी लग रहा है। फिर बीच में वो अचंभित भावना में कृष्ण पूछ रहे हैं, जाऊं मैं, बोले नहीं मत जाओ, मेरा ऐसा मन कर रहा है कि ये सब अलंकार आपको दोबारा पहना दूं और कल देखते हैं चोरी वरी का काम चला है। ठीक है तुम्हारी मर्जी है, तुम आए थे तो मैंने हाँ कर दी थी, तुम्हारी मर्जी है दोबारा पहनने की, पहना दो। वापस खड़े हो गए, घुंघरू उठाए पैरों में बांध लिए, आपका चिंतन चल रहा है ना, भगवान खड़े हैं अभी, कैसे खड़े हैं, स्टैंडिंग वेरी स्टडीली नॉट मूविंग, पर हमारी नर्तक माता जी श्रृंगार कर रही है ऐसे पैरों से, तीन यहाँ बांध दिए फिर तीन वहाँ बांध दिए, वही बीच बीच में वो करंट लग रहा है उसको, सब कुछ हो रहा है लेकिन वो बार बार आंसू पोंछ रहा है कि क्यों ये बीच में दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वापस पोंछ के वापस चालू, फिर पैर से ऊपर आता है, सब लाइन से लगाया ना उसने ऊपर से उठा के, तो नीचे से ऊपर उठाने के लिए सब लाइन से आ रहा है वापस, कमर काचनी, फिर गले में बहुत सारे छोटे यहाँ से लंबे, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ चोकर, सारे हार पहनाते हैं, उसके बाद में हाथ आगे करते हैं तो अंगूठियाँ पहनाते हैं, कलाई बंद, ब्रेसलेट, आमलेट, यहाँ से अंगूठियाँ पहनाते हैं, यहाँ से ब्रेसलेट पहनाते हैं, फिर यहाँ पर बाजू बंद पहनाते हैं, फिर चेहरे पर जाते हैं, तो चेहरे पर आकर देखते रह जाता है वो बहुत देर तक। तो श्याम सुंदर कहते हैं अरे गोवर्धन कितना समय लोगे मेरा, जल्दी जल्दी करो, मैया ये इंतजार करती होगी, बच्चे भी सुला के रखा है, वो भी मैया बोलेगी तुम सबको लेके गए, सबको लेके तुम कहाँ गायब हो गए, देर हो रही है। तो फिर धीरे धीरे वापस, फिर कुंडल पहनाता है, नाक में नथनी पहनाता है, यहाँ पर एक मणि पहनाता है, यहाँ पर एक मणि पहनाता है, फिर लास्ट में क्या बचता है, सबसे पहले क्या निकाला था, वो ऐसा फेंक दिया था, वो भी उधर ही था, लेकिन सोने की जंजीर थी एक बड़ी, वो भी लगा देता है फाइनली, और उसमें मोर पंख लगाता है, वो देखते रहता है उसको, तो क्या ऐसी बात है, इतना अच्छा मौका है, इतना सब फेवरेबल एटमॉस्फेयर है, अनुकूल वातावरण चोरी करने के लिए, बच्चा भी राजी है, सब कुछ दे दिया था, मैं पागल हो गया क्या, सब उसको वापस पहना दिया। वो देखते रह रहे कि जरा सुंदर बालक है ये, वो कह रहे अब जाऊँ मैं, ठीक है कल आओगे ना दोबारा, आऊँगा ना पक्का आऊँगा, मैं यहीं रहूँगा, मुझे कल भी मिलना। और रात को जाके सोता है और सोचते रहता है क्या मैं पागल हो गया क्या, इतना अच्छा मौका था मैंने गवा दिया, नहीं कल मैं ऐसा होने दूंगा, इतना ऐसा मैं इमोशनल नहीं हूँगा, कल मैं काबू करूँगा अपने, आज मुझे अनुभव आया ना, पहली बार था ना तो मैं फंस गया बेचारा, कल मैं सब बिल्कुल मन की तैयारी करके जाऊँगा, मन पर पत्थर रख के जाऊँगा, ना आंसू बहने दूंगा, ना कंपन होने दूंगा, ना गदगद होने दूंगा, अपना काम करूंगा और भागूंगा वहां से बस, और कोई गड़बड़ होने के पहले। तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे वापस वही सीन, वो झाड़ी में छुपा हुआ है, किलबिलाहट शुरू होती है और कृष्ण को पता है ये कहाँ बैठा है, वापस वही मुरली का नाटक, वही सम्मोहन, वही सुला देना, वापस वही कूद कर आ जाना, आ गया मैं ले लो, फिर वही। अच्छा एक बात भूल गया मैं, कृष्ण जो है ना वो घर पहुंचते हैं तो मैयाओं देखती है उनको, अरे तुमने दूसरा श्रृंगार किया क्या बीच में, लो क्यों, हाँ किसने किया, नहीं नहीं मैं आपको बता नहीं सकता, वो व्यक्ति जो है ना वो बहुत ही मतलब ऐसे घटिया टाइप का व्यक्ति है, वो आपसे मिलने योग्य नहीं है, आप उसके बारे में मत पूछना, लेकिन था एक व्यक्ति मुझे मिला था जंगल में, उसने मेरा दोबारा श्रृंगार किया आज। तो मैया ना इतनी प्रभावित हो गई, लेकिन इतना बढ़िया श्रृंगार किया है, मैं सोच रही थी मैं ही बेस्ट करती हूँ, लेकिन ये श्रृंगार मुझसे कई गुना बेस्ट है। देखो यशोदा देवी का भाव देखो, वो ईर्ष्या नहीं कर रही है कि ऐसा कोई है तो उसका उसको अरेस्ट कर लो ताकि वो कभी दोबारा ड्रेसिंग ना करे तुम्हारा, मैं ही करूँ और मैं ही नंबर वन में रहूँ, ऐसा लोग करते हैं ना मटेरियल वर्ल्ड में। तो वो पूछ रहे मुझे उससे मिलना है, उससे सीखना है मुझे, इतने सुंदर लग रहे हो आप, नहीं 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 भैया आपसे आपसे मिलने लायक नहीं हो आप, डोंट वरी अबाउट इट, फॉरगेट इट। तो भैया अभी भूल जाती है और अगले दिन आता है, वापस वही मोरपंख से जंजीर से आरंभ करता है, सारा चीज वही होता है, थोड़ा कोशिश करता है वो कि नहीं कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जड़ ज्यादा होता है कल से, कल जितना अनुभव हुआ था वो आज ज्यादा हो रहा है उससे, और फिर सारे उतार देता है और सोच रहा है कि अभी मैं देखूंगा ही नहीं बालक को, लेकिन फिर भी उसका मन है ना नहीं मानता है, बालक इतना आकर्षक है कि वो बालक की ओर देखने लगता है, तो बालक कल से भी अधिक तेजस्वी लग रहा है, बिना एक ही अलंकार के, कोई अलंकार नहीं उसके ऊपर, केवल धोती है बस और दुपट्टा है, कुछ नहीं, ना कुंडल है ना कंगन है ना कुछ नहीं है, लेकिन इतना सुंदर लग रहा है कि उसके तेज के सामने सारे जो इधर पर्वत बना हुआ है वो फीका लग रहा है, अभी लग रहा है तेज है लेकिन जैसे दीपक और सूरज, दीपक में भी ज्योति है प्रकाश सब कुछ है, लेकिन सूरज के सामने तो होने पर भी ना होने पर ऐसा अनुभव हो रहा है। फिर वो कहता है कि मैं जाऊं, तो नहीं मुझे आपको पहनाना है ये, फिर दोबारा पहनाता है पैरों से घुंघरू से लेकर ऊपर तक, लास्ट में मोरपंख पहनाता है। फिर कृष्ण बोलते मैं जाऊं, बोले न मत जाओ, आज लगता है कि आपके साथ ही रहूं और आपको देखते ही रहूं, नहीं नहीं जाना तो है, मैया डांटेगी, मैया परेशान हो जाएंगी, बालकों को भी लेके जाना है। तो फिर घर पहुंचते हैं कृष्ण श्याम सुंदर जी, फिर वही आज जो श्रृंगार सुबह किया था वो पूरा डिफरेंट है वही, लेकिन फिर भी डिफरेंट है। तो मैया फिर से पूछती है क्यों नहीं बताती मुझे कौन है वो, मुझे उसको मिलना है, कितना महान व्यक्ति होगा वो जो आपका इतना सुंदर श्रृंगार करता है। पर नहीं मैया आपसे मिलने लोगे नहीं है, मैया फिर भूल जाती है। फिर तीसरे दिन फिर वही सीन है, तीसरे दिन जब वो भगवान का श्रृंगार करता है ना, इतना फूट फूट कर रोता है, इतना फूट फूट कर रोता है। तो कृष्ण बोलते क्यों रो रहे हो, क्या बात है, ले लो ना। कहते हैं कि मैं भी चोर था लेकिन आज मुझे पता चला है कि तुम सर्वश्रेष्ठ चोर हो, मैं आया था किसी बहाने लेकिन आज तीसरे दिन के अंत में मुझे पता चल रहा है कि मेरा दिल तुमने पूरी तरह से चोरी कर लिया है, फुल्ली स्टोलन माई हार्ट। दुर्भाग्य से हमारी कथा यहां समाप्त होती है, लेकिन यह कथा क्या कहते हैं उसको, चिरंतन तरीके से चालू ही है, गोइंग ऑन। कौन था वो, गोवर्धन डाकू, खूंखार डाकू, क्या थी उसकी योग्यता, क्या कर्म थे उसके, क्या बैकग्राउंड था, क्या जाति थी, कौन से वर्ण का था वो, लेकिन उसने जो सुना उस पर श्रद्धा रखी एक पागल की तरह, एक्चुअली देखा जाए तो। अभी मैंने कल आपको कृष्ण की कहानी सुनाई और जाके आप बोलेंगे वो कहां पर है किशोरीदास, मुझे अभी मिलना है उसको, महाराज किशोरीदास, वो नवलचंद्र गोस्वामी को अभी जाके श्रीजी मंदिर में मिल के आता हूँ, मुझे उनको मिलना है, इतने अच्छे भक्त थे वो, किधर है वो, मुझे उनको मिलना है। तो पुजारी भी हंसेंगे आपको, अरे भैया 400 वर्ष पुरानी कहानी है। लेकिन एक पागलों की तरह उसने उस सुनी हुई बात पर इतनी श्रद्धा रखी कि वो श्रद्धा को कृष्ण को जवाब देना पड़ा 17वीं सेंचुरी में। वो तो कब के दिला समाप्त करके चले गए, अंतर्धान हो गए, वो नित्य लीला कर रहे हैं लेकिन लौकिक दृष्टि से तो नहीं है अभी, वो समय किसी और का है। कृष्ण भगवान को भी 17वीं सदी होने पर भी सारी लीलाओं का दर्शन कराना पड़ा उसको। इतनी श्रद्धा हमारी प्रबल होती है, श्रद्धा के सामने भगवान भी झुक जाते हैं। जैसे अगासुर को, अगासुर ऐसा मुंह खोल के बैठा था, हे बड़ा मुंह, आकाश में उसका मुंह का ऊपर का हिस्सा, जमीन पर हाईवे जैसा उसका जीभ। हम बच्चे लोग जा रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं, पता नहीं ये नया हाईवे किसने बनाया ऐसे बोल रहे, पता नहीं राक्षस भी होगा फिर भी जा ही रहे अंदर, पता नहीं मर सकते हैं फिर भी जा ही रहे अंदर, और चले भी गए अंदर अंदर उसके। और कृष्ण वो पेड़ की शाखा पर बैठे हैं, वो देख रहे हैं, कितनी श्रद्धा है मुझ पर, और चले गए वो। तो कहते मुझे जाना पड़ेगा, इतनी श्रद्धा है तो मुझे उसका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। कृष्ण भी घुस गए उसके अंदर। महाराज ने मुझे स्वयं बताया था ये कि कितना श्रद्धा दिखाई ग्वाल वालों ने कृष्ण के ऊपर। क्या बोलते हैं एंड में, अरे कुछ भी हुआ तो कृष्ण है ना, वो तो बचा ही लेंगे आपको, क्या है हम तो खेल ही लेंगे अंदर जाके। जाते बंद कर दिया अंदर, कोई चिल्ला रहे अंदर, कृष्ण ने बचाया उनको। तो एक वो क्या कहते हैं ना, वो कोमल श्रद्धा थी ना उनकी, मतलब ऐसे इनोसेंट फेथ थी उनकी कि कृष्ण है ना हमारे। लेकिन कौन सा संकट का सामना करने वाला क्या पता है उनको, हर टाइम नया संकट था ना वो, उनको पता था क्या, अभी घोड़ा आया तो मार दिया, तो अभी ये सांप आया तो कैसे होगा, नोबडी नोज व्हाट इज द नेक्स्ट एडवेंचर। तो उस तरह से श्रद्धा इतनी शक्तिशाली है कि वो बिना किसी योग्यता के भी भगवान को प्रतिसाद देने में मजबूर कर देती है। एक डाकू इतना पापों से भरा हुआ भी भगवान का शुद्ध भक्त बन गया हो, अष्ट विकारों का अनुभव हुआ उसको, आंखों से अश्रु भय उसके, तो हमें क्या जरूरत है बहाना बनाने की, हम तो अच्छे खासे हैं, कोई डाकू वाकू तो है नहीं, इतने बुरे कर्म नहीं किए हमने कि हम यहाँ पर आ गए, मतलब कुछ पुण्यों का हिस्सा है हमारे पास, उसके बदले में यहाँ पर आए हम लोग, हमारे लिए मेरे विचार से सब कुछ अनुकूल है हर चीज, हम उनके भक्त बने हुए हैं, संतों के संग में भक्त बने हुए हैं, बहुत लोगों को दीक्षा मिल चुके हैं, बहुत लोगों को हरिनाम मिल चुका है, बहुत लोग नियम का पालन करते हैं, भगवान को दर्शन करते हैं, श्रृंगार आरती का दर्शन, मंगल आरती का, काफी कुछ हम कर रहे हैं जो रस्ते में है हम लोग भगवान के। वो तो डाकू था, लोगों का खून करने वाला, लूटने वाला, कहते ना आंखों में खून नहीं था उसके, इतना क्रूर था वो। लेकिन कुछ एक बात पागलों की तरह उसने सुन ली और विश्वास रखा उसके ऊपर, और उस पर अमल किया उसने निश्चय के साथ, पूरे निश्चय के साथ। तो श्रद्धा एक बात है और निश्चय दूसरी बात है, और आखिर तक डटा रहा उस श्रद्धा के ऊपर, ऐसा नहीं कि नहीं मिला तो गया चला निकल गया, ऐसा नहीं, लगा रहा लगा रहा लगा रहा, जब तक कृष्ण प्रकट हुए, अलंकार उतारे, सब कुछ लगा रहा उसके अंदर, और फिर कृष्ण की प्राप्ति हुई उसको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का गोवर्धन डाकू के ऊपर, मैं पूछ के जवाब दूंगा उसको। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, हरि बोल।